136वीं कारिका है। ज्ञाने स्वाभाविके नार्थः शास्त्रे कश्चन विद्यते धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत तत्राम्नायो निबंधनम्। ज्ञान जो है ना वह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वाभाविक ज्ञान, जो कि जन्म से ही रहता है, जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार, कपिल, कणाद, सुखदेव, ये सब जो थे उनके उनके पास स्वाभाविक ज्ञान थे। पूर्व जन्म जन्मांतर के जो है ना धर्म के कारण उनको जन्म से ही जो है ना ज्ञान हो गया था। तो जिसके पास स्वाभाविक ज्ञान है, ज्ञाने स्वाभाविके, मन जिसके पास स्वाभाविक ज्ञान है उसके लिए न अर्थ शास्त्रे कश्चन विद्यते, उसके लिए न शास्त्र का कोई अर्थ नहीं है, शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है। धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत, और जिसके पास स्वाभाविक ज्ञान नहीं है उस ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के लिए क्या होता है, धर्मो हेतु, धर्म ही जो है ना ज्ञान में हेतु बनता है। और उस धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो तत्र आमनायो निबंधनम, उसमें आमनाय माने वेद, निबंधनम माने कारणम। तो जिसको जो है ना स्वाभाविक ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए जो है ना धर्म का होना जरूरी है, और धर्म की प्राप्ति में वेद जो होता है वह निबंधन होता है, कारण होता है। वेद में जिस तरह से आचरण करने के लिए बताया गया, जिस तरह से यज्ञादि अनुष्ठान के लिए बताया गया, वैसा करने से उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म की प्राप्ति होने से उसे ज्ञान भी होता है। अब 137वीं कारिका है, इसमें थोड़ा सा जो ना तर्क के लिए पहले भी बहुत जो है ना तर्क के विरोध में बताया गया था, अब उसी बात को जो है निष्कर्ष रूप में यहाँ बताते हैं कि वेद शास्त्र अविरोधी च, माने ऐसा तर्क जो वेद का शास्त्र का अविरोधी हो, माने वेद शास्त्र से विरोध नहीं होता हो, ऐसा जो तर्क है वह तर्क अपश्यताम चक्षु, जो अपश्यताम है, अपश्यताम माने साक्षात कर्तुम असमर्थानाम, जो साक्षात्कार नहीं कर सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए तर्क जो है वह चक्षु, तर्क जो है वह चक्षु का काम करता है, आँख का काम करता है। रूपमात्राधि वाक्यार्थः केवलान्नावतिष्ठते, केवलात् माने तर्करहितात्, तर्क रहित जो व्यक्ति है उसको रूप मात्रात् माने केवल वाक्य स्वरूपात्, रूप का अर्थ यहाँ पर करेंगे वाक्य स्वरूप, तो केवल वाक्य स्वरूप से ही जो है वह माने केवल वाक्य को सुन करके ही जो है ना न अवतिष्ठते, उस वाक्यार्थ को जो है ना निश्चित रूप से वह व्यक्ति जान नहीं पाता है। वाक्यार्थ को जानने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। हाँ, तर्क कैसा होना चाहिए, तो वह वेद शास्त्र का अविरोधी होना चाहिए। तो रूप मात्राधि वाक्यार्थ केवलान न अवतिष्ठते, केवल वाक्य स्वरूप को सुन करके समझ जो है ना वाक्यार्थ का अवधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसमें तर्क लगाने की भी आवश्यकता होती है। फिर इसी बात को 138वीं कारिका में कहते हैं, यतो विवक्षा पारार्थ्यम व्यक्ति अर्थस्य लैंगिकी इति न्यायो बहुविधा तर्के न प्रविभज्यते। अब वेद मंत्र में क्या है कि कहीं पर जो है ना संख्या की विवक्षा रहती है, कहीं पर संख्या की विवक्षा नहीं रहती है, कहीं पर जो है ना कोई शब्दार्थ दूसरे के लिए आता है, कहीं पर शब्दार्थ जो है स्वयं के लिए आता है, इस तरह से जो भी बातें हैं उसका निर्णय तर्क के आधार पर ही होता है। अगर तर्क नहीं करेंगे तो ये जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अब जैसे देखिए कि पशुना यजेत, ये जो वेद वाक्य है इसमें एकत्व संख्या की विवक्षा होती है, और ग्रहम संगमार्ष्टि, ये जो वेद वाक्य है इसमें ग्रहम में जो एक वचन है इसमें एकत्व संख्या जो है विवक्षित नहीं है। इसी तरह से नक्षत्रम दृष्ट्वा वाचम विसृजेत, ये जो कहा गया है इसमें पारार्थी है, माने नक्षत्र को देख करके वाणी का विसर्ग करना चाहिए। तो यहाँ जो है ना नक्षत्र का अर्थ करते हैं उदय काल, माने जिस समय में नक्षत्र का उदय होता है तो नक्षत्र का यहाँ नक्षत्र अर्थ नहीं करके नक्षत्र उदय काल अर्थ करते हैं। तो इस तरह से जो भी अर्थ जो है इनका निर्णय होता है वह तर्क के द्वारा ही होता है। वही कहते हैं कि यतः माने यस्मात् कारणात्, जिस कारण से विवक्षा पारार्थ्यम व्यक्ति अर्थस्य लिंगी, ये विवक्षा जो होती है संख्या आदि की विवक्षा, लिंग आदि की विवक्षा, और पारार्थ माने स्वयं स्व का अर्थ नहीं लेकर के कोई दूसरा अर्थ लेना, जैसे नक्षत्र का अर्थ नहीं लेकर के नक्षत्र उदय काल अर्थ लेना, इस तरह से अर्थस्य लिंगिकी व्यक्ति भवती, अर्थ माने पदार्थ की जो है ना लैंगिकी माने प्रामाणिकी, व्यक्ति माने अभिव्यक्ति ही, अर्थ की जो है ना प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है कैसे, तो तर्के न प्रविभज्यते, तर्क के द्वारा ही जो है ना उसका विभाग होता है कि कहाँ पर विवक्षा करनी है कहाँ पर विवक्षा नहीं करनी है। इति न्यायो बहुविधा, इस तरह से जो बहुत तरह का न्याय है, न्याय माने सरणी तरीका, कि कहाँ विवक्षा माननी है संख्या की कहाँ नहीं माननी है, कहाँ स्व अर्थ लेना है कहाँ पर अर्थ लेना है, इस तरह से जो प्रामाणिक जो अभिव्यक्ति होती है वह तर्क के द्वारा ही होती है। अब 139वीं कारिका है, शब्दानामेव साशक्ति तर्को यः पुरुषाश्रयः सशब्दानुगतो न्यायः अनागमेषु अनिबन्धनः, यः तर्कः पुरुषाश्रयः। अब तर्क जो है वह पुरुषाश्रय होता है, पुरुष में रहने वाला तर्क होता है। वह जो तर्क है शब्दानाम एव साशक्ति, शब्दों की जो शक्ति है वही जो है ना उसी का नाम है तर्क। सशब्दानुगतो न्याय, वह जो शक्ति है या तर्क है वह शब्दानुगत होता है माने शब्द में ही स्थित रहता है। अनागमेषु अनिबंधन, किंतु वह अनागम में अनिबंधन होता है, अर्थात श्रुति से जो सम्मत नहीं होगा उसमें वह कारण नहीं बनता है, श्रुति सम्मत अर्थ में ही जो है वह शब्द शक्ति कारण बनती है, या श्रुति सम्मत अर्थ में ही तर्क जो है वह कारण बनता है। अनागम में माने श्रुति भिन्न में अनिबंधन होता है माने अकारण कारण नहीं बनता है। अब 140वीं कारिका है, रूपादयो यथा दृष्टाः प्रत्यर्थम यत शक्तयः शब्दास्तथैव दृश्यन्ते विषापहरणादिषु, ताकि रूप आदयः, रूप आदि से लेना है रस गंध स्पर्श सबको, तो रूप रस गंध स्पर्श ये सब जो है ना यथा दृष्टाः जैसे देखे जाते हैं, प्रत्यर्थम प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग देखा जाता है, किसी में रूप होता है किसी में रस होता है किसी में गंध होता है किसी का स्पर्श होता है, इस तरह से प्रत्येक अर्थ में प्रत्येक पदार्थ में यह निश्चित होता है। इसी तरह से यत शक्तयः शब्दाः, इसी तरह से शब्द की शक्ति भी जो है ना यत होती है माने नियत होती है निश्चित होती है कि इस शब्द में इस तरह की शक्ति है। विषापहरणादिषु, विष का जो अपहरण होता है जहर को जो खत्म करते हैं मंत्र के द्वारा वो कैसे होता है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कि विषापहरण की शक्ति होती है और कुछ शब्दों में नहीं होती, तो जिन शब्दों में विषापहरण शक्ति होती है उन शब्दों का प्रयोग करने से विष का अपहरण हो जाता है। तो जैसे रूप रस गंध स्पर्श आदि जो है ना फिक्स है कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा, उसी तरह से शब्द में भी जो है ना शक्तियाँ फिक्स होती हैं कि इस शब्द की शक्ति से ये काम जो है ना ये होता है। अब 141वीं कारिका है, यथा एषाम तत्र सामर्थ्यम धर्मेपि एवं प्रतीयते साधूनाम साधुभिस्तस्माद् वाच्यम अभ्युदयार्थभिः, वही पुरानी बात को जो दृढ़ करते हैं इसमें, ताकि यथा एषाम माने जैसे एषाम माने रूप रसादी नाम, रूप रसादि में जैसे सामर्थ्य फिक्स होता है उसी तरह से धर्मेपि एवं प्रतीत, इसी तरह से धर्म में भी जो है ना यह प्रतीत होता है। धर्म में प्रतीत होता है मतलब साधु शब्द बोलने से धर्म होता है और असाधु शब्द बोलने से अधर्म होता है, तो इसमें भी जो है ना रूप रसादि की तरह जो है सामर्थ्य जो है शब्दों का नियत होता है। साधु नाम साधु भी तस्माद् वाच्यम अभ्युदयार्थ, अभ्युदयार्थ भी अभ्युदय के जो अर्थी हैं माने कामना करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को साधु वाच्यम, ऐसे व्यक्तियों को साधु शब्द को ही बोलना चाहिए, असाधु शब्द को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि साधु शब्द बोलेंगे तो धर्म का जो है ना लाभ होगा। 142वीं कारिका है, सर्वोदृष्ट फलान अर्थान आगमात प्रतिपद्यते विपरीतम च सर्वत्र सकते वक्तुम आगमे। दो तरह का फल होता है, एक दृष्ट फल होता है और एक अदृष्ट फल होता है। दृष्ट फल वो है जो दिखाई देता है, जैसे पानी पीते हैं तो प्यास मिटती है, खाना खाते हैं तो भूख मिटती है, ये सब दृष्ट फल है। और एक होता है अदृष्ट फल। अब जैसे हम स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ करते हैं तो वो स्वर्ग तो दिखता नहीं है, वह अदृष्ट फल है। तो इस तरह से दृष्ट फल और अदृष्ट फल सब कुछ जो है ना आगमात प्रतिपद्यते, आगम से ही उसकी प्रतिपत्ति होती है, आगम से ही जो है ना उसका ज्ञान होता है। अविपरीतं च, विपरीतम माने अदृष्टम, अदृष्ट फल की भी जो है ना प्रतिपत्ति ज्ञान आगम के द्वारा ही होता है। विपरीतं च सर्वत्र शक्यते वक्तुम आगमे, आगमे वक्तुम शक्यते माने आगम से ही जो है ना ये दृष्ट फल और अदृष्ट फल का जो ज्ञान होता है वह आगम से ही होता है। अब 143वीं कारिका है, साधुत्व ज्ञान विषया शेषा व्याकरण स्मृति अविच्छेदेन शिष्टानाम इदम स्मृति निबंधनम। आखि यह जो व्याकरण स्मृति है, सा ऐसा व्याकरण स्मृति, यह जो व्याकरण स्मृति है यह साधुत्व ज्ञान विषया है, अर्थात व्याकरण स्मृति से साधुत्व का ज्ञान होता है कि यह शब्द साधु है और यह शब्द असाधु है। अविच्छेदेन शिष्टानाम, और यह जो व्याकरण स्मृति है ये अविच्छेदेन बनी है, अर्थात इसमें कहीं भी जो है ना ब्रेक नहीं है, ये निरंतर जो है ना सतत जो है ना रहने वाली ये व्याकरण स्मृति है। शिष्टानाम शिष्टों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इदम स्मृति निबंधनम, स्मृति निबंधनम का अर्थ करेंगे शास्त्र प्रणयनम, इस शास्त्र का प्रणयन जो है शिष्टों ने किया है, और यह व्याकरण स्मृति अविच्छेदेन रहती है माने हरेक युग में हरेक सृष्टि में यह व्याकरण स्मृति रहती है। अब 144वीं कारिका है, बेखरिया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेत तद्भुतम अनेक तीर्थ भेदायाः कैया वाचः परम्परम। व्याकरण से वाक का ज्ञान होता है, आप जानते हैं वाक चार प्रकार की होती है, बेखरी मध्यमा पश्यंती और परा। तो व्याकरण पढ़ने से इन चारों का ज्ञान होता है, वही कहते हैं कि बेखरियाः बेखरी वाणी का, मध्यमायाः मध्यमा वाणी का, पश्यंत्याः और पश्यंती वाणी का, इनका भी ज्ञान होता है। और एतत् अद्भुतम, और इन तीनों वाणियों से जो अद्भुत वाणी है कौन, वाचः परम पदम, तैया वाचः परम पदम, तीन प्रकार की जो ये वाणी है पेखरी मध्यमा और पश्यंती, इनसे परम पदम, परम पदम माने परम का अर्थ करेंगे परावाक, और पदम का अर्थ करेंगे मूल अधिष्ठानम, माने इन तीनों वाणियों का मूल अधिष्ठान जो है परावाक, उस परावाक का भी जो है व्याकरण पढ़ने से ज्ञान होता है। अनेक तीर्थ भेदाया, और ये जो वाणी होती है ना ये अनेक तीर्थ के कारण भेद वाली होती है, तीर्थ माने स्थान, तो अनेक स्थानों में रहने के कारण इसमें नाम भेद हो जाता है। जैसे कंठ में अगर वाणी रहती है तो बेखरी कहते हैं, हृदय में वाणी रहती है तो मध्यमा कहते हैं, नाभि में वाणी रहती है तो उसको हम पश्यंती कहते हैं। तो अनेक तीर्थ भेदा ये वाणी होती है, अनेक स्थान में रहने के कारण इसमें भेद जो है ना वह बोला जाता है, भेद माना जाता है। और तैयावाच परम पदम, ये जो तीन प्रकार की वाणी है अनेक तीर्थ में रहने वाली, अनेक स्थान में रहने वाली, इन वाणी का, वाणियों का जो परम पद है, जो श्रेष्ठ पद है, परावाणी जो है, उसका भी ज्ञान जो है व्याकरण शास्त्र के पढ़ने से होता है। इसके आगे फिर जो है 145वीं कारिका है कि तद विभाग तद विभाग अविभागाभ्याम क्रियमाणम अवस्थितम स्वभावज्ञेश्च भावानाम दृश्यन्ते शब्द शक्तयः। ताकि ये जो है ना विभाग अविभागाभ्याम माने विभाग के द्वारा और अविभाग के द्वारा, यहाँ पर विभाग का अर्थ क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग, तो प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा क्रियमाणम अवस्थितम, प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा जो शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान क्रियमाण रहता है, उस शब्द का ज्ञान स्वभावज्ञेश्च भावानाम, भावानाम माने पदार्थानाम वस्तुनाम, तो जैसे वस्तुओं के स्वभाव होते हैं और उस स्वभाव के लोग ज्ञाता होते हैं, उसी तरह से शब्द की जो शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों को विभाग और अविभाग के द्वारा जो है विद्वान लोग जानते हैं, और वह जानकारी जो है व्याकरण के पढ़ने से ही होती है। अब 146वीं कारिका भी पढ़ लेते हैं। अनादिम अपि अवच्छिन्नाम श्रुतिम आहुः अकर्त्रिकाम सृष्टिर्निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृति। कहा कि श्रुति जो है वो अनादि है, माने उसका जो है ना आरंभ नहीं हुआ है, और अवच्छिन्न भी है। अवच्छिन्न है माने जब युग का अंत होता है, प्रलय होता है, तो वह अंतर्हित रहता है, उसका बीज जो है ना विद्यमान रहता है। तो श्रुतिम आहुः अकर्त्रिकाम, ऋषियों ने श्रुति को अकर्त्रिका कहा है, माने उसका कोई कर्ता नहीं है। शिष्टे निबध्यमाना तु स्मृति, और शिष्टों ने जो है ना स्मृति को निबध्यमान किया है, माने रचना की है। नौ व्यवच्छिद्यते, ये स्मृतियाँ भी जो है ना कभी व्यवच्छिन्न नहीं होती हैं, माने कभी नष्ट नहीं होती हैं, ये प्रवाह रूप से एक युग से दूसरे युग में, दूसरे युग से तीसरे युग में सतत जो है यह स्मृतियाँ विद्यमान होती हैं। इस तरह से आज का पाठ जो है यहीं पर छोड़ते हैं, लगता है कि एक और पाठ में इस ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी।